आज है 14 जुलाई 2000 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनाज नाटक है, इसमें कुछ भी बदली सगली नहीं हो सकता। रिकॉर्ड चला है तूने, रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के, 24-24 घंटे लगे पड़े हैं कमाई में खाने के लिए। मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए रे। काय के बदले में? कौड़ी के बदले में अमोल जीवन जा रहा है। इतना बढ़िया गीत है, बढ़िया है कि ब्राह्मणों के लिए बुढ़िया हो गया? अभी बढ़िया है, है? गीत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। किसने सुना? बच्चों ने, माना बच्चा बुद्धियों ने ये गीत ध्यान दे करके सुना। जो बूढ़े हो चुके हैं उनको तो इन बातों से गहराग आ चुका है। क्या कहा? जो बूढ़े अनुभवी हो चुके हैं इस दुनियादारी के सुखों के, उनको तो इन बातों से, इन गीतों से वैराग आ चुका है। तो बच्चों ने ये गीत सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी, बाबा भी मान लेते हैं। आखिर बच्चे महात्मा होते हैं। बच्चा बुद्धि है तो क्या हुआ? अब इसमें भी कोई अक्षर राइट भी है तो रंग भी है। मुख में तो स्मरण किया नहीं जाता है, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। तो बाप कौन सी दुनिया में आवेगा? आवेगा कि आया हुआ है, दुख की दुनिया में आया हुआ है। अब इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा है अभी। सुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। माना बाप हर युग में नहीं आता है। सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण सुख होता है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं, त्रेता में भी नाम निशान नहीं। जब द्वैत द्वापर शुरू होता है, दो दो मतें शुरू होती है, तब थोड़ा दुख शुरू होता है। और अभी कलयुग के अंत तक आते आते अनेक मत मतांतर दुनिया में खड़े हो जाते। एक ही परिवार में अनेक मतों की आत्मा इकट्ठी हो जाती है। तो जब बहुत अशांति हो जाती है वाइब्रेशन की, वाचा की, वृत्तियों की, और फिर कर्मेंद्रियों की भी, बहुत व्यभिचार हो जाता है, तो बाप को भी आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। क्या ये मीठे मीठे बच्चों को मालूम है? जो भगत बच्चे हैं वो बाप को प्रिय नहीं है, उतने मीठे नहीं लगते, क्योंकि वो कौन सी प्राप्ति करने के लिए मांग करेंगे बाप से? अंतकाल की, इसी जन्म की प्राप्तियों की मांग करते हैं। तो जैसे भगत, बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्पकाल की प्राप्तियों में अपनी बुद्धि को नहीं डुबोते, काहे में डूबोते हैं? 21 जन्म और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों की भी जो प्राप्ति होती है, माना पूरे ही 84 जन्मों की जो प्राप्ति करने में पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मीठे मीठे बच्चों को मालूम है। अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं, इस दुखधाम के लिए हमारी पढ़ाई का लक्ष्य नहीं है। हम राजयोग की पढ़ाई का जो लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं, वो लक्ष्य सत्ययुग में हमको प्राप्त होगा। इस कलयुगी दुनिया की हमें कोई प्राप्ति नहीं करनी है। यहाँ तो ये आखिरी जन्म है सबका, सारी दुनिया ही दुखी है। आखिरी जन्म में दुख होगा तब तो नई दुनिया में सुख मिलेगा। अगर इस जन्म में पूरा दुख रूपी अंधियारा न हुआ तो पूरा सुख कैसे मिलेगा? जैसे बाबा कहते हैं फुल प्रिंस तब बनेंगे जब फुल बैगर बनेंगे। तो पूरा दुख अगर इस दुनिया में हो जाता है तो हमको फायदा है कि घाटा है? फायदा है। अच्छा, अभी तो बहुत शांति का पीरियड चल रहा है, अभी तो कोई दुख और अशांति नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान के ऐसे ईसाइयों की बौद्धियों की कोई मारामारी नहीं चल रही। जब मारामारी की दुनिया शुरू होगी तब पता लगेगा कि दुख अच्छा लगता है कि सुख अच्छा लगता है। क्यों? दुख अच्छा लगेगा नहीं लगेगा है? अभी बाप आया हुआ है छत्र छाया बन करके, कितने भी दुख के पहाड़ टूट पड़े लेकिन बाप हमारा रक्षक है। तो जो बच्चे छत्र छाया के अंदर होंगे वो कितना भी दुख क्यों न पड़े, उस दुख के परिस्थिति में भी अपने को सुखमय स्थिति में अनुभव करेंगे। तो हम दुख की दुनिया की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं करते, हम कहाँ के लिए इच्छा कर रहे हैं? सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुखधाम। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य सुखधाम और शांति धाम। तो वहाँ जाना है क्या? सुखधाम में और शांति धाम में जाना है क्या? वहाँ जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट आज की दुनिया में इसीलिए पढ़ाई पढ़ते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, फर्स्ट क्लास मार्क्स के पास होंगे BA MA में, तो हो सकता है कि विदेशी गवर्नमेंट हमको बुला ले, या हमारी देशी गवर्नमेंट ही हमको विदेश में पढ़ाई पढ़ने के लिए भेज दे। तो कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? सुखधाम और शांति धाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहाँ जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि सुखधाम शांति धाम को यहाँ आना है, है? शांति धाम और सुखधाम पहले होती है जीवन मुक्ति। हमारी बुद्धि में पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति तो शांति धाम की स्टेज है, उससे भी ऊंची स्टेज क्या है? जीवन भी रहे और जीवन में रहते हुए सुख शांति रहे, ये हमारा लक्ष्य है। तो पहले होती है जीवन मुक्ति लक्ष्य रूप में। शांति धाम तो घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। ऐसी स्टेज जब बनती है, जब निसंकल्प स्टेज हो, बीज रूप स्टेज हो, तो ऐसी स्थिति में रहने वाला अगर कोई कर्म करता भी है तो उसका कोई फल नहीं बनता। اس لیے بتایا کہ کام کیا ہے نہ کیا ہے برابر ہو گیا، جیسے کہ کام کیا ہی نہیں. شانتی دھام میں کوئی پاٹ نہیں بجایا جاتا، ایکٹرس گھر میں چلے جاتے ہیں وہاں کوئی پاٹ نہیں بجاتی، پاٹ اسٹیج پر بجایا جاتا. یہ دنیاوی جو رنگ منچ ہے، اسٹیج ہے، وہ ساکار ہے یا نراکار؟ ساکار اسٹیج ہے، یہاں پاٹ بجایا جاتا ہے. جیسے حد کا ناٹک ہوتا ہے ویسے یہ بے حد کا ناٹک ہے. ان کے آدھے مدھے انت کا راز سوائے باپ کے کوئی اور سمجھا نہیں سکتا. کیا آدھے مدھے انت تو بتا سکتے ہیں، آدھے میں ہے کرشن، سچ جی کرشن کہو یا سنگم جی کرشن کہو، مدھ میں ہے راجا وکرمادتیہ اتوا اس کو پڑھائی پڑھانے والا اس کا باپ یا گرو، اور انت میں ہے بیگر تو پرنس، فل بیگر تو فل پرنس. لیکن یہ تو ساٹھ پٹ بات ہو گئی، اس میں راج کی بات کیسے سمجھے؟ راز کیا ہوا، ڈیٹیل کیا ہوا، گہرائیاں کیا ہوئی؟ یہ آج مدھیہ انت کا راز سوائے باپ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا. واسطو میں یہ یاترا ہے 84 جنموں کی، جس میں کچھ آج کے جنم ہیں، کچھ مدھ کے جنم ہے اور کچھ انت کے جنم. یاترا کہیں اتوا یدھ کہیں، یدھ اکثر بھی صرف سمجھانے میں کام میں لاتے ہیں. ہمارا کوئی یدھ ہے نہیں، گیتا میں بھی کیا لکھا ہے، دھرم کھیتر کرو کھیتر. یہ دنیا ایک کرو کھیتر ہے، یدھ کا میدان ہے، کر مرو یا مر مٹو، دھرم کھیتر ہے، دھرم کرو یا دھرم کرو. تو یہ یدھ اکثر صرف سمجھانے میں کام میں لاتے ہیں. واسطو میں ہمارا کوئی کسی سے اسکول یدھ ہے نہیں، پانڈو تو کسی سے لڑتے نہیں، اس میں یدھ آدی کی کوئی بات ہے نہیں. یاترا بھی اکثر ہے، باقی ہے تو یاد جسے دگن پڑتے. پرنتو ہم یاد کرتے کرتے پاون بن جائیں گے تو بگن پڑھنا بھی بند ہو جائے گی. یہ یاترا پوری بھی یہاں ہی ہوگی. کہاں جانا آنا نہیں ہے، کیا کہا کہ پرم دھام جانا ہے یا سکھ دھام جانا ہے، یہ جیون میں رہتے رہتے ایسی اسٹیج بنانی ہے، آتما ایسی استھتی میں استھت ہو جائے کہ کبھی پرم دھام کا انوبھو کرے نسنکلپ اسٹیج، کبھی سکھ دھام کا انوبھو کرے، سکھ کا نام نشان نہیں، سکھ ہی سکھ، آنند ہی آنند کی انوبھوتی ہو. तो कहीं जाने आने की बात हुई क्या? नहीं, बुद्धि को सिर्फ व्यायाम कराने हैं। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाने हैं। पहले जागेंगे शांति धाम, माने बुद्धि को शांति धाम की स्टेज में ले जावेंगे। परंतु कब ले जावेंगे? शर्त क्या रख दे? है? पावन बनेंगे तो परम धाम का अनुभव करेंगे। दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, मन वचन कर्म से, तन से, मन से, धन से विचारी बनते रहेंगे तो वो स्टेज नहीं बन सकती निसंकल्प स्टेज। निसंकल्प स्टेज बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट पहली शर्त है बाप के घर जाने की। आप अभी तो जा ही नहीं सकते, अपन को आत्मा समझना है। तुम प्योरिटी कहां से आती है? आत्मा समझने से कभी इम्प्योरिटी नहीं आएगी। क्या समझने से आती है? देहभान आता है तब इम्प्योरिटी आती है। पहले देहभान, फिर अपवित्रता। तो अपन को आत्मा समझना है। मुझे आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, अपार सुखों का भी पार्ट है और अपार दुखों का भी पार्ट है। क्यों है? अपार सुखों का पार्ट किस दुनिया का है? सतयुग त्रेता में क्या खासियत होती है जो वहाँ अपार सुखों का पार्ट है? हैं? बॉडी कॉन्शियस नहीं है, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप को याद रहती है। और दूसरी बात है, वहाँ कोई प्रकार का विचार नहीं है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। विचार कहाँ से पैदा होता है? द्वापर द्वैत वाले युग से। तो वहां से दुख शुरू हो जाता है। तो ये याद रखना पड़े कि मुझे आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, सुख का भी पार्ट है, दुख का भी पार्ट। अभी संगम युग में मैं कौन सा पार्ट बजाऊं? कारण का तो पता चल गया कि आत्मा में दुख कहाँ से आया और आत्मा में सुख का पार्ट कहाँ से आया, क्यों आया। अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा होता है। बाप राय देते हैं, बहुत सहज राय देते हैं। क्या राय देते हैं? 84 जन्मों का पार्ट पूरा करने के लिए क्या राय देते हैं? ये सुख दुख का जो पार्ट है उसे पूरा करने के लिए क्या राय देते हैं? बहुत सहज राय देते हैं। मुझे याद करो, मुझे याद करो। तथाकथित ब्राह्मण इसका अर्थ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मुझे बिंदी को याद करो। अरे बिंदी को याद करें? कोई पार्टिकुलर बिंदी है क्या? हो सकती है कोई पार्टिकुलर बिंदी हो सकती है कि कोई लाल स्पेशल बिंदी हो या सफेद हो या पीली हो या बड़ी हो, जैसे शिवलिंग भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बड़ा बनाए देते हैं, तो कोई बहुत बड़ा बिंदा हो ऐसा तो कुछ है नहीं, आत्मा आत्मा बिंदु बिंदु सब एक जैसी, सभी अनुरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो कौन से बिंदु को याद करें? जरूर कोई बिंदु की पैक्यूलिटी होनी चाहिए, तो पार्ट से पता चलता है। वो परमात्मा पार्ट, सुप्रीम सोल का पार्ट, वो शिवशंकर भोलेनाथ का पार्ट, वो पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है? ब्रह्मा का पार्ट अलग, ज्ञान होना चाहिए। विष्णु का पार्ट अलग, ज्ञान होना चाहिए। और शंकर का पार्ट अलग। क्या बोला है? तुम वंडरफुल एक्टर हो, तो उसमें भी तो नंबर वाली होंगे। क्या बोला? शंकर का पार्ट है वंडरफुल, जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, इतना वंडरफुल। तो बहुत सहज राय देते हैं, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ आते जाते नहीं हो, तो सुख धाम में जाते हो या शांति धाम में जाते हो, नहीं, बात आकर के कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और डकैत को याद करो तो क्या हो जाएंगे? डकैत हो जाएंगे। चोर को याद करेंगे तो चोर हो जाएंगे। जैसे को याद करेंगे बुद्धि वैसी ही बन जाएगी। पत्थर को याद करेंगे तो बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा पत्थर बुद्धि हो जाएगी। तो मुझे याद करो, मन सिर्फ बिंदी को याद करें तो पावन नहीं बन जाएंगे। अरे अभी तो बताया, पहला पहला लक्ष्य हमारा क्या है? पावन तो बनना। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट पावन बन करके घर नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं, वो भी पावन बनते हैं। तो हमें कैसा पावन बनना है? देवताओं जैसा पावन बनना है या विदर्भियों जैसा पावन बनना है? पहले बताया कि पहले पहले है हमारा लक्ष्य जीवन मुक्ति। हमारा लक्ष्य सिर्फ शांति धाम में जाने का नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने का नहीं है, मुक्ति से भी ऊंची स्टेज है जीवन मुक्ति। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। माने मुझे जो कहने वाला है वो शांति धाम की स्टेज में ही रहने वाला है या सुख धाम की स्टेज में भी रहने वाला होगा? शांति धाम की भी स्टेज में रहने वाला होगा और सुख धाम की स्टेज में भी रहने वाला होगा। और ईश्वरीय सेवा के लिए जो दुख की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, दुख की अनुभूति कर रहे हैं, बंधन में हैं, उनको बंधन से छुड़ाने के लिए उनके नजदीक भी जाने वाला होगा। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे भी ये तीन अवस्थाएं बनाओ। कौन कौन सी? साकारी मैंने दुख धाम की स्थिति, ज्यादा टिकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वरीय सेवा में ढेर सारे जो विघ्न आते हैं, अवस्था नीचे ऊपर होती है उसका मुकाबला करने के लिए। अगर मुकाबला कम नहीं होता तो उससे क्या होता है? अगर मुकाबला कम नहीं होता है تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تیسری سیوا میں اگر مقابلہ کم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. اس لیے کہیں جیسے اونچی اسٹیج پر چڑھتے ہیں, پہاڑ پر چڑھتے ہیں, تو بہت زور سے طوفان آتا ہے, تو طوفان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور اوپر چڑھتے ہیں, کبھی شیلٹر بھی لینا پڑتا ہے, کبھی کسی پہاڑی کی سہن بھی لینی پڑتی ہے. تو ایسے ہی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس لیے سیوا میں ہم کو بہت مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور زیادہ مقابلہ کریں تو انشت بھی ہو جائے. چلو ہمارا انشت نہ ہو, جو ہمارے سے مقابلہ کر رہا ہے اس کا کوئی بڑا پاپ کرم بن جائے, تو تھوڑے سمے کے لیے رکنا پڑتا ہے. کہاں؟ دکھ دھام میں تھوڑا تسلی سے رہنا پڑتا ہے, دھیرج دھر, دھیرج دھر. تو دکھ دھام کی استھتی کا بھی ہمیں انوبھو کرنا ہوتا ہے, سکھ دھام کا بھی انوبھو کرنا ہوتا ہے, اور شانتی دھام کا بھی انوبھو کرنا ہوتا ہے. یدھ کوئی ہے نہیں. یدھ کب ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے یدھ ہوتا ہے, دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے, یا ایک ہاتھ سے؟ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ایک آدمی لڑنا چاہتا ہے اور ہم بھی لڑائی شروع کر دیں, ایک آدمی ہاتھا پائی کرتا ہے اور ہم بھی بجائے بھائی جانے کی کیا کریں, ہاتا پائی شروع کر دیں, تو کیا ہوگا؟ اور گنبھور یدھ ہو جائے گا. ایک بولتا ہے اور دوسرا بھی بولنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ باقی یدھ ہو جائے گا. تو ہمارا کوئی بھی یدھ ہے نہیں. اپنے کو تمو پردھان سے ستو پردھان بنانا ہے, یہ سدیو یاد رکھیں کہ بابا نے ہم کو کون کون سی یکتیاں دی ہیں, کس کس پرستھتی میں کیا کیا کرنا ہے. مایا پر جیت پانی ہے, چاہے کام کی مایا ہو, کروبھ کی مایا ہو, لوبھ کی ہو, بوہ کی ہو, اہنکار کی ہو, جیت پانی ہے. جیت پانے کے لیے یکتیاں اپنانی. بچے جانتے ہیں 84 کا چکر پورا ہونا. کتنے کا چکر؟ 84 کا چکر. 83 کا نہیں کیوں ہے؟ 82 جنم ہو گئے نہیں. کوئی بچوں کا 82 جنم کا چکر نہیں ہو سکتا ہے. بابا 84 جنم لینے والے بچوں سے بات کرتے ہیں جو آل راؤنڈر کارڈ دھاری ہیں, آل راؤنڈر ہیں. پورے 84 جنموں کا جن کو انوبھو ہے, اونچے سے اونچی سکھ میں اسٹیج کا بھی جنہوں نے انوبھو کیا ہے, اور نیچے سے نیچی سکھ میں اسٹیج کا بھی جنہوں نے انوبھو کیا ہے. سکھ میں تو سکھ میں اسٹیج ہے ہی, لیکن دکھ میں ہی اپنی اسٹیج ہے. جسے کہتے ہیں کبھی کبھی کہاں تک سہن کریں. تو کہاں تک سہن کریں مانے گھبرائے رہے. کچھ نہ کچھ 84 جنم میں سے کمی ہے, پورے 84 جنم لینے والے نہیں. ایسے بول نکلتے ہیں, ایسی فیلنگ آتی ہے, اتوا بھاگ کھڑے ہونے کی اچھا ہوتی ہے. بھارت میں منشی تو من بدھی والے ہوتے ہیں نا. بھارت میں ضرور منشی ہوں گے, زمین تھوڑے ہی بدلے گی. بھارت کی زمین تو وہی رہے گی, بدلے گی نہیں. ابھی تم جانتے ہو ہم ستو پردھان تھے, پھر تمو پردھان بنے, اب پھر ستو پردھان بننا. منشی پکارتے بھی ہیں کہ آ کر کے ہم کو پتک کے پاون بناؤ, آ کر کے پاون بناؤ. कि ब्रह्मतन में आओ और आकर के चले जाओ, फिर हम पावन बनते रहेंगे। पुकारते हैं कि भगवान आओ, ब्रह्मा के तन में पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ और हम पावन बनते रहेंगे। क्या वो क्या कहते बुलाते हैं, आओ किस लिए आओ, पतित से पावन बनाने के लिए आओ, ये कह करके नहीं बुलाते कि ज्ञान सुना करके चले जाओ, ज्ञान सुनाकर पावन बना कर चले जाओ, नहीं, आओ। और आखिरी लक्ष्य क्या है, पतित से पावन बना करके जाओ, ज्ञान सुना के चले जाना सिर्फ। ये भाषणबाजी तो दुनिया में बहुत गुरु करते रहे, जितने गुरु आए सब ने ये भाषणबाजी कर दी, क्या ज्ञान सुनाया और चले गए, दुनिया भर बाद में पतित ही बनती रही और बनती रही। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, ये बात तो सच्ची है ना, दुनिया तो नीचे ही गिरती चली गई, कि स्नेह प्यार बढ़ता गया, सहानुभूति बढ़ती गई, नहीं घटती गई, तो मनुष्य पुकारते भी नहीं कि आकर के हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है जो आकर के हमको पतित से पावन बनाते हैं, और कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, बिंदी बन के फुदक फुदक के आते हैं या पांव पांव आते हैं, पांव पांव आते हैं, ट्रेन से नहीं आते, कैसे आते हैं कुछ नहीं जानते हैं, बिंदी बन करके आते हैं या साकार में पांव पांव आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, कार से आते हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्या जानते हैं, आते हैं वो मालूम है, कब आते हैं कब चले जाते हैं वो मालूम है, मालूम है, हैं? हैं? एक सीटर से आता है, कैसे आते हैं कुछ नहीं जानते, अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया, अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, क्या समझदार बनाया, कैसे आते हैं कब आते हैं कब चले जाते हैं ये जान गए, क्या जान गए, आना और जाना पता चला, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता चलता है, मुरली में तो बोला है ये ब्रह्मा भी नहीं, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कि मैं कब आता हूँ, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो, अभी बाबा तुम्हें समझदार बनाया है, क्या समझदार बनाया है, कि बिंदी रूप में नहीं आते हैं, जरूर कोई साकार तन में आते हैं, और जब आते हैं तो बच्चों को पता चलता है, क्या आते हैं क्योंकि साकार तन है तो पता तो चली जाएगा, और जाते हैं तो बिंदी तो है नहीं, है तो साकार, तो जाते हैं तो भी पता चल जाता है, तो कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो, वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे, कहां के जो नई दुनिया होगी वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे होंगे, यहाँ के साहूकारों से तो बहुत ऊंचे होंगे, बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे उनके पास धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना, जो असली प्रॉपर्टी है आत्मा की कौन सी, प्योरिटी, वो तो उनके पास नहीं थी, इन राजाओं से वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। क्या कहा? जो इस कली की दुनिया के राजाएं होते हैं, उन राजाओं से वहाँ सतयुग की या स्वर्णिम संगम युग की जो साधारण प्रजा होगी वो भी बहुत ऊंची होगी। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। क्या कहा? संगम युग में भी बाप के परछाए में है, बाप की स्मृति है, बाप की याद की छत्र छाया के नीचे है, तो क्या अंतर पड़ेगा? पावन पने का अनुभव होगा। और रावण की परछा में है तो अपवित्रता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह के जो विकारी राजाएं हैं, वो निर्विकारी देवताओं के आगे अपन को पतित कह के माता जरूर देखते। कब की बात? द्वापर कलयुग की बात। अभी संगम युग की बात नहीं होगी ये है? संगम युग में भी ये होगा। क्या होगा? जो पतित पने में रहने वाले हैं, ईश्वरीय सेवा तो करते हैं लेकिन स्वार्थ बुद्धि बनकर के करते हैं, अंदर से चालाकी भरी रहती है। तो ऐसी स्वार्थ युक्त सेवा करने वाले राजा तो बनेंगे, लेकिन कौन सी युग में राजा बनेंगे? पतित युग में राजा बनेंगे। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जो गीता में शब्द आया है, ऐसी मूढ़ा समय जन्म जन्मांतर राजा ही तो लेंगी, लेकिन कहाँ राजा ही लेंगी? पतित दुनिया। तो निर्विकारी देवताओं के सामने जाकर के विकारियों को जो अधूरे देवताएं बनते हैं। कैसे देवताएं बनते हैं? अधूरे देवताएं, उनको माथा जरूर टेकना पड़े। माथा टेकना माना उनको झुकना पड़े। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ाई देते हैं। कहाँ आते हैं? बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ाई देते हैं। और गुरु लोग यहाँ आते हैं तो फट से नीचे गिरा देते हैं। ये गुरु कहाँ होंगे? सतयुग त्रेता में होंगे, द्वापर कलयुग में होंगे, संगम युग में भी होंगे। द्वापर कलयुग की ही बात नहीं है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी ऐसे गुरुओं का पार्ट बजाते हैं। अभी पतित से पावन पने की बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? पतित पावन, पतित से पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ। तो गुरु लोग अपन को समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? हम पतितों को पावन बनाने आए हैं। वो तो स्वार्थ बुद्धि जो है उसका रिजल्ट फिर क्या निकलता है? संगम युग में लास्ट में उनको माथा झुकाना पड़ेगा। तो बाप आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं, और गुरु आते हैं तो फट से नीचे गिरा देते। एक सेकंड की बात है। क्या सेकंड की बात है? निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप आकर ऊंचे कह देते हैं, सद्भावान लवते ज्ञानम। बाप पर जिनकी सद्भा बैठ जाती है, निश्चय बैठ जाता है, उनको फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। और गुरु लोग बाप के ऊपर से निश्चय हटा, अनिश्चय बुद्धि बने, और कोई गुरु के ऊपर निश्चय धारण कर लिया तो गुरु फट से नीचे गिरा देती है। एक सेकंड की बात है, नीचे चढ़ाने में और ऊपर चढ़ाने में। अभी बाप ने तुमको तीसरा नेत्र दिया है, इन आंखों से तो बाप देखा नहीं जाता। ہے ان آنکھوں سے وہ بندی بات کو سپریم کورٹ نہیں دیکھا جا سکتا کہ کون سے تن میں آیا ہوا ہے, دیکھا جا سکتا ہے ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے, بنا کی آنکھوں سے جان کی ناک نیتر سے دیکھ سکتے ہیں. تو جان کا تیسرا نیتر باپ نے آ کر کے دیا ہے, جان انجن کا تو گرو دیا. تو اجان کا اندھیرا وہ کلمس کا بناش ہو جاتا ہے. ایسے کپڑے پہنتا ہے کالے کپڑے پہنتا اجان اندھکار. تو باپ نے تیسرا نیتر دیا ہے, یہ جان کا نیتر ہے. تو تیسرا نیتر ہوتا نہیں ہے تو کوئی شنکر کو تیسرا نیتر ہوتا ہو تم بچے دورن دیسی بن جاتے. اوپر مول وطن سے لے کر سارے ڈرامہ کا چکر تمہاری بدھی میں یاد, کہاں سے لے کر مول وطن سے لے کر ساکار وطن تک, مول وطن سے سکھدام اور سکھدام سے دکھدام تک کا سارا چکر چوراسی کا تمہاری بدھی میں ہے. جیسے حد کا ڈرامہ دیکھ کر کے پھر آئے سناتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا, ایسے ہی ابھی 84 کا چکر ہماری بدھی میں بیٹھ جائے گا. ایسی آتما سمجھدار بن جائے گی. ایکٹر سمجھدار کون سا ہے اور بے سمجھ ایکٹر کون سا ہے؟ جو اپنے پارٹ کو بھلی بھانتی جانتا ہو اور ایکٹ کرتا ہو وہ ہے سمجھدار ایکٹر, اور جو اپنے پارٹ کو بھول جائے, رنگ منچ پر جائے اور کھڑا ہو جائے تو سب ہنسیں گے, تالی بجا دیں گے. اس کو اپنا پارٹی بھول گیا, کیا بولنا تھا, کیا ایکٹ کرنا تھا, تمہاری بدھی میں بھرا ہوا ہے. جو تم برنن کرتے ہو کیا کہا, ہماری آتما میں کون کون سا پارٹ ہے وہ باپ دادا بورڈ پر لکھ کر کے بتا دیں گے, کاغذ پر لکھ کر بتا دیں گے, بک سے بتا دیں گے. یہ ہر آتما اپنے اپنے ایکٹ کا سوئن ہی ہے, انبھو کرے گی اور بتا دے گی. ہر آتما پروف سہت بتا دے گی کہ ہمارا یہ ایکٹ ہے, ہمارا امک جنموں کا یہ پارٹ ہے. تو تمہاری بدھی میں بھرا ہوا ہے جو پھر برنن کرتے ہو, ان کی درشتی سے, گتی سے, کرم سے, ان کی چلن سے ان کا پارٹ پرتک ہوگا. 14/7/2000 کی وانی کا دوسرا پیج. تو بدھی میں آتما کا پارٹ بھرا ہوا ہے جو گانن کرتے ہیں, آتما میں بھر کر آتے ہیں, پھر آ کر کے ڈلیوری کرتے ہیں. یہ پھر ہیں بےحد کی باتیں. تم بچوں کی بدھی میں ایسے بے حد ڈرامہ کے آدھ مدھیہ انت کا راز رہنا چاہیے جو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اس حد کے ناٹک میں تو ایک ایکٹر نکل جاتا ہے تو پھر بدلے میں دوسرا آ سکتا ہے, وہاں تو چینج ہو جاتی ہے. یہاں چینج نہیں ہو سکتی. وہاں تو کوئی بیمار ہوا تو ان کے بدلے پھر دوسرا ایڈ کر دیں گے. یہ تو چیتنیہ ڈرامہ ہے, اس میں ذرا بھی ادلی بدلی نہیں ہو سکتی. ہر ایک کا پارٹ فکس ہے. تم جانتے ہو ہم آتمن, یہ شریر روپی چولا ہے جو پہن کر ہم بہو روپی پارٹ بجاتے ہیں. نام روپ دیش فیچر سب بدلتے جاتے ہیں. ایکٹر کو اپنی ایکٹ کا تو معلوم ہوتا ہے نا. باپ بچوں کو یہ چکر کا راز تو سمجھاتے رہتے ہیں, ستیگ سے لے کر کے کلیگ تک جاتے ہیں, آتے ہیں ستیگ سے لے کر کلیگ تک, پھر جاتے ہیں, پھر نئے سرے آ کر کے پارٹ بجاتے ہیں. ان کی ڈیٹیل سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے. کیا کہا, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس چکر کی ڈیٹیل سمجھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ شوٹنگ کا راہ سمجھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایڈوانس میں جب سے آئے تب سے شوٹنگ کا گیان ہوا، اس سے پہلے سامان نالج تھی، تو دونوں ملا کر کے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جب تک جینا ہے تب تک پینا ہے، جب دے بھنگ سے مر جائیں گے ٹوٹل 100% تو پینا بند، نشچے بیٹھ جائے گا اپنے پارٹ کے اوپر۔ تو بولا ڈیٹیل سمجھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے، بیج میں بھل نالج ہے۔ کیا کہا؟ جو سارے منشی سچی روپی جھاڑ کا بیج ہے اس میں بھل نالج سمائی ہوئی ہے، پھر بھی اس نالج کو سمجھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تمہاری بدھی میں سارا بیج اور جھاڑ کا راز ہے، تو بھی جو اچھے بدھیمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بیج اوپر میں ہے۔ اس کا بیج، اس منشی سکتی جھاڑ کا بیج اوپر میں ہے۔ اوپر میں ہے کا مطلب کیا ہوا؟ پرمدھام میں ہے۔ پرمدھام میں ہونے کی بات نہیں، نیچے اوپر ہونے کی بات نہیں، اونچی اونچی تیج میں ہے۔ ان کی اتپتی پالنا اور سنہار کیسے ہوتا ہے، جس کو سمجھانے کے لیے ترمورتی دکھایا گیا۔ اسی اتپتی پالنا اور سنہار، یہ سمجھانے جو باپ دیتے ہیں اور کوئی بھی منشیہ نہیں دے سکتا۔ جب یہاں آئے تب پتا پڑے کون آئے، باپ جب یہاں آئے تو پتا پڑے۔ جب باپ آ کر کے بتاتے ہیں کسی اتپتی پالنا اور سنہار کیسے ہوتا ہے اور کن کے دوارا ہوتا ہے، اس لیے تم سب کو کہتے ہو یہاں آ کر کے سمجھو۔ کیا کہا؟ اپنے گھر بیٹھ کر کے نہیں سمجھ لو، کیا کرو؟ یہاں آ کر کے سمجھو۔ میں نے سمجھانے والا جہاں ہو وہاں پہنچنا پڑے، اس کے سنمکھ پہنچنا پڑے۔ یہاں آ کر کے سمجھو، کوئی کوئی بہت کٹر ہوتے ہیں تو کہتے ہم کو کچھ بھی سننا نہیں ہے، کوئی تو پھر سنتے بھی ہیں۔ کیا کہا؟ کٹر دھرم کون کون سے ہوتے ہیں؟ مسلمان بہت کٹر ہوتے ہیں، وہ تو کان میں ہی انگلی دے لیں گے، اللہ میاں کے بارے میں ہم کوئی سے نہیں سنیں گے۔ ہم تو روز یاد کرتے ہیں، ہم کو کسی سے سننے کی درکار نہیں ہے۔ ملا کا مطلب کیا ہے؟ داڑھی والا نہیں، موت لا، جو اس دنیا میں موت کی دنیا لا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ملا۔ اسلام دھرم سے ہی موت کی دنیا شروع ہوتی ہے، آج سے 2500 ورش سے یہ موت کی دنیا پیدائش ہوئی۔ اس سے پہلے کون سی دنیا تھی؟ 10 اندریوں کی اولاد نہیں ہوتی تھی، کون سی اولاد ہوتی تھی؟ 10 اندریوں کی اولاد پیدا ہوتی تھی، سات سکھی تھی۔ اس سے موت کی دنیا کی اولاد سات دکھی ہے۔ تو کوئی کوئی بہت کٹر ہوتے ہیں، بدھرمی کٹر ہوتے ہیں یا سودھرمی کٹر ہوتے ہیں، जो भी दूसरे धर्म के हैं, दूसरे देश के हैं, बहुत कट्टर होते हैं। दूसरे देश वालों को, दूसरे धर्म वालों को निग्लेक्ट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, भगाते रहते हैं, भागो हमारी देश। एक भारत देश ही ऐसा है जिसने माता का पार्ट बजाया, मदर कंट्री। कौन सा देश गाया जाता है? भारत। इसकी गोद में मुसलमान आए, भले आक्रमण किया वो भी समावेश, ईसाई आए भले आक्रामक बने, कितना नरसंहार किया वो भी समावेश। आज भारत की राजधानी में बराबर बराबर की संख्या देखी जा सकती है, हिंदू भी है, क्रिश्चियंस भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। हर धर्म को, हर देशवासियों को इस देश में आए हुए भगवान को प्राप्त करने का पूरा मौका मिलता है। तो कोई कोई धर्म बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ नहीं सुनना है। कोई तो फिर सुनते हैं, कोई लिटरेचर कर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। उनको लेके कर दो तो फाड़ के फेंक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरंदेशी हो गई, ऐसे क्यों कहा? विशाल बुद्धि दूरंदेशी क्यों कहा? लिटरेचर देने के मामले में उसका भी तरीका बता दिया। पहले नज्म को परख लो, थोड़ा सुनाए के देख लो, उसको पसंद आता है, पसंद आता है, कुछ सुनता है तो लिटरेचर देना चाहिए। कुछ समझाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, ऐसे ही किसी को लिटरेचर देने से कुछ भी समझेगा नहीं, फाड़ के फेंक देगा। तो विशाल बुद्धि बनना है, दूरंदेशी बुद्धि बनना है। तीनों लोगों को तुम जानते हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है उसको तुम जानते हो, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। क्या कहा? कम से कम सूक्ष्म वतन कोई आत्मा के लिए कितने साल के लिए रखते हैं? है? सूक्ष्म वतन की रचना कम से कम कितने साल की बताइए? 40 साल। माना इस दुनिया में कोई ऐसी भी आत्मा है जो सूक्ष्म वतन की साक्षात्कार की बातों को सिर्फ संगम युग में 40 साल तक मानती है, उसके बाद सूक्ष्म वतन कोई ऊपर है ऐसा कुछ नहीं मानती। सूक्ष्म वतन कुछ होता ही नहीं। बाकी जिनके अंदर भक्ति भाव के संस्कार रहते हैं वो साक्षात्कार की बातों पर, सपने की बातों पर विश्वास करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ गया, उनकी बुद्धि से भक्ति हो जाती है। तो सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती पांच बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबर वन, ये मनुष्यों का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है, उल्टा झाड़ है। गीता में भी इसका वर्णन है, पूर्वम मूलम मदस्ताक है, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता, ना आत्मा और कोई जगह बैठ सकती है। आत्मा ब्रह्म महत्व तत्व में खड़े रहती है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हुए। ये स्टार्स को दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती और न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो,
بچے جانتے ہیں ہم گولڈن ایج میں تھے.
کیا کہا؟
بچے جانتے ہیں, جو بچے نہیں بنے ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم گولڈن ایج ستی کے آدمی میں تھے. اب آئرن ایج میں آ گئے, ابھی ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی ہے اس دنیا میں. بھلا مایا کی چمک کتنی بھی ہے لیکن اس دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی. پرنتو یہ ہے راون کی گولڈن ایج اور وہ ہے ایشوریہ گولڈن ایج. منشیہ کہتے رہتے ہیں 6-7 ورسوں میں اتنا اناج ہوگا, جو بات مت پوچھو. دیکھو انہوں کا پلان کیا ہے اور تم بچوں کا پلان کیا ہے. باپ کہتے ہیں میرا پلان ہے پرانی دنیا کو نیا بنانا. تمہارا تو ایک ہی پلان ہے. جانتے ہو باپ کی سریمت سے ہم اپنا ورثہ لے رہے ہیں. بابا راستہ بتاتے ہیں, قیمت دیتے ہیں, یاد میں رہنے کی مت دیتے ہیں. مت اکثر تو ہے نا, سنسکرت اکثر تو باپ نہیں بولتے ہیں. جو بھی مت دیتے ہیں کون سی بھاشا میں دیتے ہیں؟ ہندی میں دیتے ہیں. باپ تو ہندی میں ہی سمجھاتے ہیں. برہما بابا بھی ہندی میں ہی سمجھاتے تھے, ان میں سمجھانے والا سمجھاتے نہیں تھے, سناتے تھے. برہما بابا میں بھی سنانے والا کون تھا؟ شیو بابا. انہوں نے ہندی بولی تھی, کیا بولا؟ ہندی میں ہی تو مرلی بولی نا. جب وہ تو انگریزی کے بھی شبد آتے ہیں, اردو کے بھی شبد آتے ہیں, ہندی بھاشا ہی ایسی ہے. وہ سب بھاشاؤں کو اپنے میں مکس کر لیتی. سینکڑوں بھاشا ہے نا, تو باپ تو ہندی میں ہی سمجھاتے ہیں. بھاشائیں تو ڈھیر ہیں. انٹرپریٹر بھی ہوتے ہیں جو سن کر کے پھر سناتے ہیں. ہندی اور انگلش تو بہت جانتے ہیں, پڑھتے ہیں. باقی ماتائیں گھر میں رہنے والی اتنا نہیں پڑھتی ہیں. آج کل ولایت میں انگریزی سیکھتے ہیں تو پھر یہاں آنے سے بھی انگلش بولتے رہتے ہیں. اب یہاں ہندوستان میں آنے پر انگلش بولنے کی کیا ضرورت؟ لیکن ان کو پریکٹس پڑ جاتی ہے انگریزی بولنے کی, تو یہاں بھی آ کر بولتے رہتے ہیں. ہندی بول نہیں سکتے. گھر میں آتے ہیں تو ماں سے انگلش میں بات کرنے لگ پڑتے ہیں. وہ بیچاری بوجھ پڑتی ہے. یہ سب آج کی باتیں سمجھا رہی ہیں بے حد کی. ان کو انگریزی باتیں لکھ مار ہوتی ہے, ماں کو لاٹھی ماری جاتی ہے کیا؟ ماں کو پیار کی ممتا نہیں بھولتی ہے. ان کو پیار سے سمجھاؤ.